नमस्कार भारत, 11 नवंबर दिन बुधवार, मैं हूं संदीप सोनी। लाल कृष्ण आडवाणी सहित बीजेपी के चार नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कड़ी आलोचना की। बिहार में हार के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं?
बाहर से भी आक्रमण हो रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी के भीतर इस तरीके के स्वर सुनाई देते हैं तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
उधर बिहार में नीतीश कुमार की फिर ताजपोशी की तैयारियां शुरू।
छठ के बाद शपथ ग्रहण होगा, यही मान करके चलिए कि 18 के बाद किसी तिथि को हो सकता है।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा को अकाल तख्त का जत्थेदार बनाया गया। खेल की खबरें और समाचार पत्रों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। भारतीय जनता पार्टी के चार वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व की निंदा करते हुए कहा है कि भाजपा ने दिल्ली की हार से कोई सबक नहीं सीखा। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार की ओर से जारी इस साझा बयान में कहा गया है कि बिहार में पार्टी की हार की वजह यह है कि पिछले एक साल से पार्टी को शक्तिहीन बना दिया गया है। इन नेताओं ने बिहार में हुई हार की गहन समीक्षा की मांग की है। सीरिया के सरकारी बलों ने उत्तरी प्रांत अलेप्पो के एक प्रमुख सैन्य ठिकाने पर चरमपंथी गुट आईएस के 2 साल के कब्जे को खत्म कर दिया है। सरकारी बलों ने इस खुशी में हवा में गोलियां चलाईं। सरकारी टेलीविजन ने भी इस इलाके में उत्साहित सरकारी सैनिकों को घूमते हुए दिखाया। विश्लेषकों का मानना है कि आईएस के खिलाफ लड़ाई में रूस के शामिल होने के बाद से ये सरकार की पहली अहम जीत है। अमेरिका के अभियोजकों ने अमेरिका के इतिहास में वित्तीय कंपनियों पर हुए सबसे बड़े साइबर हमले के मामले में 3 लोगों पर आरोप लगाए हैं। इनमें 1 अमरीकी और 2 इसराइली नागरिक हैं। इस हमले में वर्ष 2012 से 2015 के बीच करीब 1 करोड़ लोगों की निजी जानकारी की चोरी की गई। इन तीनों पर शेयर बाजार की कीमतों, पैसों की धोखाधड़ी, गैरकानूनी ऑनलाइन जुआ घर चलाने और कंप्यूटर हैकिंग का आरोप है। प्रीत भरारा न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी हैं, उन्होंने बताया।
In our view, the conduct alleged in this case showcases a brave new world of hacking for profit.
हमारे विचार में इस केस में जिन बातों का इल्जाम लगाया गया है वह नए जमाने के मुनाफे के लिए हैकिंग को दिखाती हैं। अब ये हैकिंग सिर्फ जल्द ही कुछ कमा लेने के लिए नहीं है, ये हैकिंग तमाम तरह के आपराधिक कामों के लिए है। अपने शिकार लोगों का पता लगाने, अपने प्रतिस्पर्धियों का पता लगाने, मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करने और संक्षेप में पूरा कारोबार चलाने के लिए है। ये थे प्रीत भरारा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस की एंटी डोपिंग प्रयोगशाला के प्रमुख ग्रेगरी रोडचेंकोव ने इस्तीफा दे दिया है। कल ही विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट में रूस पर एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाया गया था। रूस के खेल मंत्री विटाली मुत्को ने कहा कि रोडचेंकोव अपने साथ सारी नकारात्मकता लेकर जा रहे हैं। कल रोडचेंकोव ने कहा था कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट मूर्खों ने तैयार की है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने उन रूसी एथलीट्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है जिन पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट में डोपिंग का इल्जाम है। अपने एक बयान में IOC ने कहा कि वह धोखाधड़ी करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें भविष्य में ओलंपिक गेम्स से बहिष्कृत कर देगी। हालांकि क्रेमलिन ने एजेंसी की रिपोर्ट को निराधार बताया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार करिए संदीप सोनी का। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत भारतीय जनता पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं ने बिहार चुनाव में मिली करारी हार को लेकर पार्टी नेतृत्व की कड़ी आलोचना की है। आडवाणी के साथ मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार ने एक साझा बयान जारी कर हार की गहन समीक्षा की मांग की है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
बिहार में हार के गहरे जख्म झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अभी विपक्ष के हमलों की काट खोज ही रहा है कि तभी पार्टी के अंदर से ही बगावत के सुर बुलंद होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया है 4 सीनियर नेताओं का साझा बयान। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार की ओर से जारी इस बयान में पार्टी नेतृत्व की कड़ी आलोचना की गई है। सीनियर नेताओं का कहना है कि पार्टी ने दिल्ली की हार से कोई सबक नहीं सीखा। साझा बयान में एक साल के अंदर पार्टी के शक्तिहीन होने के मुद्दे को उठाया गया है और हार की गहन समीक्षा की मांग की गई है। चार वरिष्ठ नेताओं ने ये भी कहा है कि इस हार की समीक्षा वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने बिहार चुनाव अभियान का प्रबंधन किया और इसके लिए जिम्मेदार थे। ये बयान जारी होने के बाद बीबीसी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस बयान के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से एक अहम कदम के तौर पर देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल का कहना है,
चूंकि ये सामूहिक प्रयास है तो आप समझ ही सकते हैं कि व्यापक सलाह मशवरे के बाद ऐसा हुआ होगा कि आखिरकार चारों नेताओं ने आपस में बातचीत की होगी, बैठ करके उसका मसौदा तैयार किया होगा अपने साझा बयान का। ये जरूर उस नाते महत्वपूर्ण है।
बीते साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद से आडवाणी समेत ये चारों सीनियर नेता लगभग हाशिए पर हैं। समय समय पर इनका असंतोष जाहिर होता रहा है। इन चार नेताओं के पहले बिहार के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, आर के सिंह और भोला सिंह भी केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। विरोधी दल इसे लेकर चुटकी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सोमवार को हार के कारणों का मंथन किया था और महागठबंधन की एकजुटता को हार की वजह बताया था। साझा बयान जारी करने वाले सीनियर नेताओं को संसदीय बोर्ड की ये दलील रास नहीं आई है। प्रदीप कौशल मानते हैं कि सीनियर नेताओं के बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किल में इजाफा हो सकता है।
बीजेपी के लिए या सरकार के लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अभी बाहर से भी आक्रमण हो रहे हैं तो ऐसे में पार्टी के भीतर अगर विद्रोह होता है या इस तरीके के स्वर सुनाई देते हैं तो वो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक, जिसे कहेंगे कि अच्छा संकेत नहीं है।
हालांकि चार सीनियर नेताओं का साझा बयान जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेता सक्रिय हो गए हैं। राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। इन नेताओं का कहना है कि पार्टी हर सुझाव पर गौर करने को तैयार है। हालांकि इस आश्वासन भर से भारतीय जनता पार्टी में आया संकट हल होना मुश्किल लगता है। वात्सल्य राय, बीबीसी, दिल्ली।
बिहार में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक ओर जहां विरोध के स्वर उभर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी उस पर लगातार निशाना साध रहा है। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की किन गलतियों से विपक्ष को फायदा पहुंचा।
ये तो संतरे की जो कलियां होती है उसकी तरह से खिली हुई पार्टी हो गई है। प्रधानमंत्री जाकर के यूरोप में और अमेरिका में जाकर के वो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाना है, नया इंडिया बनाना है, लेकिन क्या रसोई में पकना है, क्या फ्रिज में रखा है, जब इस पर भी बहस होने लगी। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं देंगे हम उनको पाकिस्तान भेजेंगे। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी एज इफ बिहार के लोग यह प्रो पाकिस्तानी हो। संजीव बाल्यान जो मुजफ्फरनगर के दंगों का दोषी है उसको मंत्री बनाया और दादरी में जाकर उसने कहा कि हम तन मन धन और गन के साथ यहाँ के लोगों की मदद करेंगे जिन्होंने अखलाक की हत्या की है। ऐसे माहौल में एक तो विषाक्त बहुत माहौल हो गया, दूसरा जो कास्टिस्ट पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत ही बीजेपी ने की ये कह करके कि हमारा प्रधानमंत्री पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और अब ये बनिया बामनों की पार्टी नहीं बची है। उन्होंने महादलित का सवाल उठाया कि नीतीश कुमार ने महादलित का अपमान किया है, रामविलास को डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा नेता बताया, उन्होंने कुशवाहा को लेकर के जो सम्राट अशोक है वो भी कुशवाहा है ये प्रचार किया पूरे बिहार भर में, हमारे जो राष्ट्रकवि है रामधारी सिंह दिनकर उनको लेकर के प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम किया दिल्ली में और पहली बार लोगों को दिल्ली में पता लगा कि रामधारी सिंह दिनकर की भी कोई बिरादरी थी।
भारतीय जनता पार्टी में हार के बाद जो विरोध के सुर अंदर से ही उभर रहे हैं उसे आप किस तरह से देख रहे हैं?
उसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने कहा था चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती है तो इसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बाढ़ बहेगी। तीनों मुख्यमंत्रियों की कुर्सी बचेगी, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे मिस्टर चौहान हो या रमन सिंह हो, वरना वो तीनों तक हट गए होते। और दोनों भाइयों को छोड़ करके जितने मंत्री हैं आज उन सबके यहाँ बड़ी भारी दिवाली मन रही है। सबकी जासूसी हो रही थी, सबके टेलीफोन ट्रेस हो रहे थे और बिल्कुल अघोषित इमरजेंसी हालात देश में हो गई थी। चपरासी रखने का अधिकार नहीं, पीए रखने का अधिकार नहीं, ऐसा ऑथोरिटेरियन मैंने अपने 40-45 साल के जीवन में नहीं देखा।
जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। उधर बिहार में नई सरकार के गठन पर कवायद के साथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 20 नवंबर को संभावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
पिछले दो महीने की तमाम राजनीतिक अटकलों और उठापटक पर विराम लगाते हुए महागठबंधन अपनी महाविजय का उल्लास दीपावली के रूप में मना रहा है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर दीपावली के एक रात पहले से ही जगमग हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार के 20 तारीख को ऐतिहासिक गांधी मैदान में सार्वजनिक समारोह में शपथ ग्रहण करने की चर्चा ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में दोगुना जोश भर दिया है। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी तेजी से चल रही है। समारोह में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह।
मैं ऐसा समझता हूं कि अभी पर्वों का समय चल रहा है, तो निश्चित रूप से छठ के बाद तो शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उसकी तिथि, उसका समय, सब कुछ अंदाज भी लगा रहे कि 18 के बाद होगा, तो यही मान करके चलिए कि 18 के बाद किसी तिथि को हो सकता है।
जबकि चुनाव परिणाम के बाद राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे राष्ट्रीय जनता दल के लिए इस जीत ने पार्टी के दफ्तर और लालू के आवास पर एक के बाद एक कई समारोहों को सौगात दी है। रविवार को पार्टी को मिली महाजीत की खुशी, सोमवार को बिहार की राजनीति में पहली पारी खेलने उतरे लालू के बेटे तेजस्वी यादव का जन्मदिन और आज दीपावली ने घर के माहौल को पूरी तरह उत्सव और हर्षोल्लास से भर दिया है। पार्टी प्रवक्ता और पहली बार विधायक बने शक्ति सिंह यादव कहते हैं,
इस सारी खुशियां एक साथ, तेजस्वी जी का जन्मदिन है और ये सारी चीजें, जब खुशियों का जब दौर आता है ना, तो सब कुछ एक साथ होता है, तो सामने सब कुछ आपको दिख रहा।
महागठबंधन ने जो धमाका किया है उसने राज्य के मुख्य विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में तीसरी पंक्ति की पार्टी बना दिया है। दीपावली के अवसर पर पार्टी कार्यालय में कोई खास रौनक नहीं है। वहीं दूसरी ओर पहले दीपावली और फिर महापर्व छठ के बाद शपथ ग्रहण समारोह को महागठबंधन अपने सार्वजनिक विजय उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी में पूरी जोश के साथ जुट गया है। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
इधर पंजाब की सियासत में भी सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। राज्य में सत्ताधारी अकाली दल का विरोध कर रहे सिख नेताओं ने कल अमृतसर में बुलाए गए सरबत खालसा में पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा को अकाल तख्त का जत्थेदार नियुक्त किया है, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। सरबत खालसा में कई अहम फैसले लिए गए। अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
सरबत खालसा की बैठक में सिख संगठनों के प्रतिनिधियों ने फैसला लेते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सहित दो अन्य तख्तों के जत्थेदारों को बदलने का फैसला लिया है और पंजाब सरकार को पिछले दिनों हुई घटनाओं का दोषी बताया है, खासतौर पर जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह को हटाकर जगतार सिंह हवारा को श्री अकाल तख्त साहिब का जत्थेदार बनाने का फैसला लिया। हवारा इस वक्त तिहाड़ जेल में है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की हत्या के मामले में वे आरोपी हैं। भाई हवारा के जेल में होने के कारण जत्थेदार ध्यान सिंह मंड को कार्यकारी जत्थेदार बनाया गया है। बीबीसी से बात करते हुए जत्थेदार मंड का कहना था,
मैं सारे खालसा पंथ का तहे दिलों धन्यवाद करता और मैं खालसा पंथ नूं विश्वास दिवांदा हां कि अकाल तख्त दे मान मर्यादा, अकाल तख्त दा सिद्धांत बिल्कुल बरकरार रहूगा।
सिख कौम में जब कभी भी घोर संकट के बादल आते हैं तो कौम में आए हुए संकट को हल करने के लिए सरबत खालसा बुलाने का प्रावधान है। यह प्रथा सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में शुरू की थी। सरबत खालसा में हालांकि सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नुमाइंदे शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन देश विदेश से लगभग 150 के करीब सिख संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया और इस बड़े धार्मिक बैठक में जत्थेदारों के बदलने के अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि सीधे तौर पर खालिस्तान की मांग तो नहीं की गई, पर यह कहा गया कि जनवरी 1986 में हुए सरबत खालसा के फैसलों को पूरी तरह लागू किया जाएगा। 1986 जनवरी में हुए सरबत खालसा में खालिस्तान की मांग की गई थी। इस बारे में पंजाब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, जो कि स्पोक्स पर्सन है श्रोमणी अकाली दल के, उन्होंने हमें बताया।
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है। जिन लोगों को संगत ने एसजीपीसी इलेक्शन में नकार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, उनको कैसे नकार दिया जा सकता है कि वो एक गैदरिंग करके सबके फैसले खुद करते। इसलिए ये इलीगल काम है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, हर पंथक काम है, मर्यादा के खिलाफ है और पंजाब की अमन और शांति को डिस्टर्ब करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। जब 1986 का मता आप रेफर कर रहे हैं तो जो आगे सामने आपके लोग बैठे हैं उनको तो मालूम नहीं कि आप किस मते को रेफर कर रहे हैं। तो ये कुछ छुपाकर जो संगत से पास करवाने की कोशिश की गई है, ये जो इस बात का सबूत है कि उनको मालूम है कि लोग अब खालिस्तान की बात नहीं सुनेंगे, लोग अब मिलिटेंसी की बात नहीं सुनेंगे, लोग अब अमन शांति के खिलाफ बात नहीं सुनेंगे।
जानकर बताते हैं कि सरबत खालसा में श्रोमणी अकाली दल के विरोधियों की एक जुटता नजर आई, जिसके कई दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। पंजाब में 2017 को चुनाव होने वाले हैं और इस सरबत खालसा का असर पंजाब की राजनीति पे होना स्वाभाविक नजर आ रहा है। अमृतसर से बीबीसी हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन।
नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं आज संदीप सोनी के साथ रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। कार्यक्रम में आगे है समाचार पत्रों की सुर्खियां, लेकिन पहले जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन जाने वाले हैं और उनके इस दौरे से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद बर्मिंघम पहुंचे ये जानने के लिए कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मोदी के इस दौरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं।
मैं बर्मिंघम में हूं और ये इलाका मिनी भारत कहलाता है। यहां भारतीय मूल के कई लोगों की दुकानें हैं, जैसे कि इस दुकान में इस वक्त मैं मौजूद हूं। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारतीय मूल के ये लोग भारत के हित का नेतृत्व ब्रिटेन में करें। इस घर में एक ही छत के नीचे तीन पीढ़ियाँ आबाद हैं। मोहिंदर सिंह भाटिया 50 वर्ष पहले पंजाब से बर्मिंघम आए थे, वो अब भारतीय समुदाय के एक अहम लीडर हैं। प्रधानमंत्री के साथ खाने पर और वेम्बली स्टेडियम में होने वाले समारोह में एक वीआईपी गेस्ट हैं। खाने पर अगर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई तो वो उनसे क्या पूछेंगे?
मैं उनको ये कहूँगा कि हमारा देश जो है मल्टी कल्चरल है, मल्टी फेथ है और इस वैल्यू को मत गुम होने देना। ये वैल्यू जहाँ वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में सब भाई भाई, वो जो हम लोग कहते रहे हैं और गांधी जी के गाने गाते जाओगे या उस पर अमल भी करोगे।
ब्रिटेन में 15 लाख वाला भारतीय समुदाय आर्थिक रूप से कामयाब माना जाता है। बर्मिंघम के इस मंदिर में पंडित धर्मदत्त 33 साल से पुजारी हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक जरूर हैं, लेकिन भारत में हाल में हुई घटनाओं से परेशान है।
प्रधानमंत्री को यह सोचना पड़ेगा कि जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है एक दूसरे के प्रति, उन शब्दों को सोच करके बोलना होगा। और कुछ भारतीय संस्कृति, जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति चली आ रही है, उस भारतीय संस्कृति को इकट्ठा लेकर के ही हमको चलना होगा। हम कोई नई संस्कृति उसमें पैदा नहीं कर सकते। भारतीय हमारी प्राचीन संस्कृति यह है, हम सभी मिलकर के रहते हैं।
विदेश में बसे भारतीयों में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अब भी बनी हुई है, लेकिन भारत में होने वाली हाल की घटनाओं से वो चिंतित हैं। जुबैर अहमद, बीबीसी, बर्मिंघम, ब्रिटेन।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है ये जानने का कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां आज क्या कुछ हैं। प्रगति सक्सेना स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी संदीप, आज सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर भास्कर ने एक खास रिपोर्ट छापी है। तीन देश के तीन हिस्सों में दिवाली देखने आप जा सकते हैं भास्कर के साथ। गोवा, मुंबई और कोलकाता की दिवाली के बारे में उन्होंने एक खास रिपोर्ट दी है। अब मैं चलती हूँ उन सभी खबरों की तरफ जो सारे लगभग सारे अखबारों में हैं। और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बिहार का असर, आडवाणी मुरली यशवंत ने साझा बयान जारी किया। मोदी शाह पर निशाना, पूछा पार्टी आज मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में क्यों है। उधर राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि हार के लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है, ये जनसत्ता में छपा है। दूसरी खबर, बेअंत सिंह के हत्यारे हवारा को बनाया अकाल तख्त का जत्थेदार। ये जो सिख कट्टरपंथियों ने अमृतसर में सरबत खालसा का आयोजन किया, उसमें उन्होंने जत्थेदारों को हटाने का ऐलान किया है। हार के बाद सरकार हो गई है थोड़ी सी सक्रिय, और उसने आर्थिक सुधारों की घोषणा की है, विदेशी निवेश आसान किया है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का बड़ा फैसला लिया है, और रक्षा सहित 15 क्षेत्रों में FDI को आसान कर दिया है। FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नाराज पूर्व सैनिकों ने पदक लौटाए हैं, इनमें 2000 पूर्व सैनिक थे जिन्होंने अपने पदक लौटा दिए। टीपू सुल्तान जयंती पर कर्नाटक में एक व्यक्ति की एक मुठभेड़ में मौत हो गई। जनसत्ता में खबर है कि असहमति का भी सम्मान हो, ऐसा दलाई लामा ने अपने व्याख्यान में कहा। IIT मद्रास में वो एक व्याख्यान दे रहे थे कि सहनशीलता समाज में ज़्यादा होनी चाहिए, और उन्होंने इस बात पे दुख जताया कि पिछले दशक में असहनशीलता बढ़ी है। जनसत्ता में ही एक खबर है कि कौन है अंबेडकर के इस घर का मालिक। लंदन में जिस घर में अंबेडकर रहकर पढ़े थे, उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी, उस मकान को 32 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया गया है, लेकिन किसने ख़रीदा है ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि सरकार इसका जल्द ही लोकार्पण करने जा रही है। वन रैंक वन पेंशन का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया। उसके बाद भारत पाकिस्तान सीरीज़ की संभावनाएं बढ़ी, ये हिंदुस्तान में खबर है। BCCI के जो नए अध्यक्ष हैं वो इस बारे में बहुत उत्सुक हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच हो। मोहल्ला क्लिनिक के लिए दिल्ली में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बहुत शुक्रिया प्रगति जी तमाम अखबारों की सुर्खियाँ बताने के लिए। और अब जानते हैं देश दुनिया में आज क्या कुछ हो रहा है।
आज जिन खबरों पर रहेगी नजर, उनमें शिक्षा दिवस, रूसी विमान हादसे की जांच और यमन में चक्रवात अहम हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। इस मौके पर देश भर के स्कूलों में मौलाना आजाद के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को याद किया जाएगा। रूस ने पहली बार माना है कि मिस्र के सिनाई क्षेत्र में हुआ रूसी विमान हादसा एक चरमपंथी गतिविधि का नतीजा हो सकता है। अब इस पर हो रही जांच में इस तरीके से भी छानबीन शुरू होगी। सोकोत्रा द्वीप पर तबाही मचाने के बाद मेघ नाम का चक्रवात यमन में अब्यान और बायदा प्रांतों की तरफ बढ़ रहा है। सोकोत्रा में आए इस चक्रवात में 6 लोगों की मौत हो गई। यमन युद्ध की विभीषिका को पहले ही झेल रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में संसद पूर्व राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए 31वीं बार बैठक कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान का शासनकाल पिछले साल मई में खत्म हो गया था। माल्टा की राजधानी वालेटा में आज भूमध्य सागर क्षेत्र के प्रवासी संकट पर यूरोपीय संघ और अफ्रीका का सम्मेलन हो रहा है। संभावना है कि यूरोपीय देश अफ्रीकाई देशों से कुछ प्रवासियों को अपने पास वापस बसाने के लिए कहेंगे। इसके बदले यूरोप अफ्रीका को विकास कार्यों में और अधिक वित्तीय मदद देगा।
अभी खेल की खबरें बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक नज़र डालते हैं BBCHindi.com पर। पहले पन्ने पर इस समय जो एक खबर लगी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पांचजन, जो उसका मुखपत्र माना जाता है, उसके हवाले से, जिसमें ये छपा हुआ है कि भारतीय मीडिया में देश में असहिष्णुता की बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ऐसे जैसे कि भारत में गृह युद्ध की स्थिति हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को व्यक्त करने वाली इस पत्रिका में ये जो लेख छपा है, इस लेख के मुताबिक ये बिहार चुनाव के पहले देश में बनाए गए माहौल का एक हिस्सा था, जो आजकल असहिष्णुता के नाम से अखबारों में छप रहा है और मीडिया में आ रहा है। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट BBCHindi.com पर, जहां एक और खबर आपको रोचक लगेगी, दिलचस्प लगेगी। भारत सरकार एक कुत्ते को तमगा देने वाली है, क्या वजह है इसकी और इस कुत्ते की क्या खासियत है, ये खबर भी आप हमारी वेबसाइट पर आकर विस्तार से पढ़ सकते हैं। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। स्टार बल्लेबाज तिलक रत्न दिलशान के शानदार 56 और दिनेश चांदीबल के नाबाद 40 रनों की मदद से मेजबान श्रीलंका ने पल्ले कल में खेले गए पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 30 रन से मात दी। श्रीलंका ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 215 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर करने के लिए अपने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और इसके बाद जब उनके बल्लेबाज जीत के लिए 216 रनों के लक्ष्य को सामने रखकर मैदान में उतरे तो उनकी पूरी टीम 19.5 ओवर में ही 185 रनों पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर ने सबसे अधिक 57 रन बनाए, बाकी बल्लेबाज कोई विशेष योगदान नहीं दे सके। श्रीलंका के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने 19 रन देकर 2 और ऑफ स्पिनर सचित्र सेनानायके ने 46 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सलामी बल्लेबाज मुरली विजय आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मुरली विजय ने मोहाली में पहली पारी में 75 और दूसरी पारी में 47 रन बनाए थे। भारत के कप्तान विराट कोहली 16वें और चेतेश्वर पुजारा 13वें पायदान पर हैं। मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा को लेकर क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
देखें मुरली विजय जहां तक मेरी सोच है तो सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग के बाद सबसे बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन जो मैं अपने एक्सपीरियंस में जानता हूं। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है हर जगह, जहां भी आप खेले हैं, श्रीलंका में खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में, मुरली विजय ने रन बनाए तो बहुत बेहतरीन उनका टेम्परमेंट है। टेम्परमेंट जो है वो टेक्निक से भी ज्यादा अच्छा है और इस सीरीज में भी वो साबित कर रहे हैं कि वो एक पिलर है इस इंडियन टीम के। चेतेश्वर पुजारा, मुझे नहीं पता है कि क्यों उन्हें टीम से पहले बाहर किया गया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि कम से कम सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट जो है उनको एक रिटर्न गारंटी देनी चाहिए कि भले ही वो फेल हो लेकिन आप 1-1.5 साल तक टीम से नहीं बाहर निकालेंगे।
गेंदबाजी में भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन 8वें से 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उधर भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और के श्रीकांत अपने खिताब के बचाव के लिए आज से चाइना ओपन में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। साइना नेहवाल यहां शीर्ष वरीयता के साथ खेल रही है और पहले दौर में उनका सामना चीन की सुन यू और 5वीं वरीयता हासिल के श्रीकांत का सामना हांगकांग के युन हू से होगा।
आपने इतिहास की किताबें पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन टीपू सुल्तान का नाम ज़रूर सुना होगा। टीपू सुल्तान के नाम को लेकर उनकी जयंती मनाई गई कर्नाटक में और उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और उससे जुड़े संगठनों ने विरोध किया। इसकी वजह क्या थी, इस वजह को जानने समझने के लिए आइए वेबसाइट हमारी bbchindi.com पर, जहाँ ये खबर विस्तार से लगी हुई है और घड़ी की सुई बता रही है कि 6:58 होना चाहते हैं और वक्त हो चला है एक बार फिर विश्व समाचारों का प्रगति सक्सेना से।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व की निंदा करते हुए कहा है कि भाजपा ने दिल्ली की हार से कोई सबक नहीं सीखा। सीरिया के सरकारी बलों ने उत्तरी प्रांत अलेपो के एक प्रमुख सैन्य ठिकाने पर चरमपंथी गुट आईएस के 2 साल के कब्जे को खत्म कर दिया है। अमेरिका के अभियोजकों ने अमेरिका के इतिहास में वित्तीय कंपनियों पर हुए सबसे बड़े साइबर हमले के मामले में 3 लोगों पर आरोप लगाए हैं। रूस की एंटी डोपिंग प्रयोगशाला के प्रमुख ग्रेगरी रोडचेंकोव ने इस्तीफा दे दिया है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने उन रूसी एथलीट्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है जिन पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट में डोपिंग का इल्ज़ाम है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि वह बुरुंडी में संभावित हिंसा के लिए उतना भी तैयार नहीं है जितना 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार से पहले था। केंद्रीय और पश्चिमी अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रतिनिधि स्कॉट कैम्बेल ने कहा कि बुरुंडी की सुरक्षा सेवाएं और सरकार का समर्थन करने वाली मिलिशिया ही वहां होने वाली हिंसा की जिम्मेदार हैं। बीबीसी समाचार।
और अभी अभी एक खबर आ रही है जिसके मुताबिक अमेरिका में एक छोटा निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है और कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। ये खबर जैसे जैसे हम तक पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आज नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान, खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे। ठीक 1 घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, जो 24 घंटे आपके साथ है।